نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير Amazed by الأسماء الحسنى آج ہم اس سیریز میں سے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام الحلیم کریں گے لفظ حلیم اور الحلیم اگر ال کو الگ ہٹا بھی دیجئے تو ہم بہت اچھی طرح سے اس نام سے فیمیلیئر ہیں ہے کھانے کی چیز جس کا اس سے کوئی موقع نہیں ہے اور بعض لوگ اس چیز پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حلیم کو دلیم کہنا چاہیے میں اس وقت اس بات پہ نہیں آؤں گی اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن حلیم کبھی پکائی ہو اور کبھی کھائی ہو اس کو ذہن میں رکھیے میں اس چیز کو بھی ایک اچھا طریقے سے استعمال کرنے کا موقع سمجھتی ہوں کہ سخت دالیں ہوتی ہیں نا گندم چاول جو دال اب آپ کہیں تو میں آپ کو ترکیب بھی بتا دوں کیونکہ مجھے بہت اچھی حلیم بنانی آتی ہے یا تھی بھول نہ گئی ہوں تو الحمدللہ مجھے یاد ہے ابھی بھی بڑی سے بڑی چیز آپ اس میں ڈال دیں سب گل کے گھٹ جاتی ہے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الحلیم کو سوچیں تو ذہن میں لائیے بڑے بڑے گناہ بڑی بڑی سرکشیاں اور ایک کی نہیں دو دن کی نہیں کئی دنوں کی کئی سالوں کی کئی مہینوں کی ہماری گستاخیوں کو ہماری غلطیوں کو ہماری خامیوں کو جو ذات پیس کے بالکل ایسے کر دیتی ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں اس کا نام ہے الحلیم نہایت بردبار امیجن کیجئے تعلق پیدا کیجئے اس نام سے حا لام میم سے ہے یہ لفظ اور حلم کہتے ہیں نفس اور طبیعت پر ایسا ضبط رکھنا کہ غیظ و غضب کے موقع پر بھڑک نہ اٹھے ذرا سا اپنے اوپر لیں اپنے شوہر کی طبیعت کو دیکھیے اپنے 18-20 سال کے جوان ہوتے ہوئے بیٹے کو دیکھیے اور اپنے آپ یا اپنی دوستوں میں کسی ایسے کو دیکھیے ویسے بہت اچھی ہیں بس غصہ آ جائے تو بھڑک اٹھتی ہیں بس ایسے موقع پہ یہ برداشت نہیں کرتے ویسے تو بڑے اچھے ہیں ذرا سے امیجن کیجئے غیظ و غضب کے موقع پہ بھڑکنے والے کو الحلیم کہتے ہیں اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا غیظ اور غضب اس کو آتا ہوگا 14 فروری کو اور زنا ہوتے اور بدکاریاں دیکھتے ہوئے اور کتنا غیظ و غضب آتا ہوگا غیر اللہ کو پوچھتے ہوئے دیکھ کر اور کتنا غیظ و غضب آتا ہوگا ہم جنس پرستی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اور کیسے میرا جسم میری مرضیوں کے دعوے کرتے اور اسی طرح انسانیت کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے کے پلان بناتے دیکھ کر اس ہستی کو کتنا غصہ آتا ہوگا لیکن کیوں نہیں پھر پکڑ ہوتی بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ لوگ تو اتنے گناہ کرتے ہیں پھر اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتا ہمیں کیوں پکڑتا میں نے تو کبھی کبھار کیا میں نے تو ونس ا وائل کیا اور میرے سے کیوں ایسا ہو گیا آپ سوچئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا بعض لوگ بڑی جذباتی سپیچز دینے لگ جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی کوئی کسی کو ذرا سی تکلیف دے دے یا یعنی اینٹی اسلام کوئی بات کرتے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا بھی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے غصے کے سوا یا کڑنے اور جلنے کے سوا سوائے یہ کہ چلو اسی کڑنے اور جلنے کو کیش کرا کر لوگوں کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے کھول دیں ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اللہ جو گناہ میں پھنس گیا اس کو نکال دے اس سے زیادہ ہم کیا کریں گے لیکن وہ ہستی جو نیست و نابود کر سکے وہ سرمے کی طرح پیس سکے اور پھر نہ پیسے پھر لوگ بڑے خوش ہو کے انجوائے کر کے کہ آج تو مزہ آ گیا پارٹی میں آج کے فنکشن میں تو خوب جوش چڑھا اور آپ صرف اپنے مسلمز کو نہیں دوسروں کو دیکھیں اور میں ایک جملہ بڑا ڈرتے ہوئے بولنے لگی ہوں غیر مسلم کے یہ جو گناہوں کا تذکرہ اکثر گناہ کی مد میں ہم کرتے ہیں نا یہ غیر مسلم کے گناہوں پہ اللہ کو کوئی نہیں اتنا غصہ آتا کیونکہ ان کا اس سے بھی بڑا گناہ موجود ہے مسلمان جب یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے لیکن جو جس درجے کا بھی گناہ گار ہے لیکن الحلیم وہ ہستی ہے جس کو اپنے اوپر قابو بہت ہے جس کو اپنے اوپر بہت کنٹرول ہے اسی طرح اصل میں حلم کے معنی متانت کے ہیں متین کا نام سنا ہوگا آپ نے متانت اردو میں بھی بولتے ہیں شستہ اردو میں لوگ یہ لفظ بولتے ہیں متانت ہے یہ کس کو کہتے ہیں متین متانت عقل سے پیدا ہوتی ہے چونکہ متانت بھی عقل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لیے حلم کا لفظ بول کر عقل مراد لے لیتے ہیں حلم عقل کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے احلام عقلیں تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں عقل کا صحیح استعمال جی عقل کا صحیح استعمال، تو حلم سے عقل بھی مراد ہے، قرآن میں احلام کا لفظ آیا ہے، دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. اسی طرح عرب لوگ کہتے ہیں حلمہ العقل وتحلم، عقل نے اسے بردبار بنا دیا، یعنی عقل ہوگی تو پھر ہی نا، وہ کہتے ہیں نا عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، جن کو عقل ہے وہی کڑتے جلتے ہیں، باقی تو کہتے ہیں موج کرو، کیا مصیبت پڑی ہے شکر نہیں کرتے. لوگ نمازیں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، آپ کو کیا غم پڑا ہوا ہے، اور کیا آپ ہر وقت لوگوں کو ایک ہی دکھ دیتے رہتے ہیں کہ کچھ کرو کچھ کرو، مزے سے بیٹھے میں آرام کریں، جہاں سارے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. جتنی عقل سلیم ہوگی اتنا آپ کے اندر حلم ہوگا. اور ایک جملہ تو اکثر ہی آپ نے میری بھی زبان سے سنا ہوگا کہ علم کے ساتھ جب حلم نہیں آتا تو تکبر اور اکڑ آتی ہے. علم کے ساتھ حلم ہی چاہیے اور وہ ہی کم ہوتا ہے. جتنا علم آتا ہے اتنی اکڑ اور اتنی سختی اور اتنی تلخی ہماری آوازوں میں ہمارے لہجوں میں آنے لگتی ہے. حلیم رہیے، اگر اللہ حلیم ہے تو مجھے آپ کو بھی حلیمی دکھانی چاہیے. کسی گناہگار کو گناہ کرتے دیکھ کر، کسی نافرمان کو نافرمانی کرتے دیکھ کر، کسی مشرک کو شرک کرتے دیکھ کر، آئے غصہ اس کام پہ پر اس بندے کے اوپر آپ کا غصہ اس طرح نہ ٹوٹے، تو پھر تین لفظ دہرا لیجئے، بردبار، دور اندیش، بڑے ہی تحمل والا. اتنی خوبصورت پرسنالٹی تصور میں آتی ہے نا، کسی انسان میں اگر یہ تین چیزیں ہوں نا تو وہ بڑے ہی ڈیسنٹ پرسن ہوتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا مہذب ہے، ڈیسنٹ کو مہذب کہہ لیجیے اردو میں، تہذیب والا کون ہے جو ہر بات پہ بڑھ کے اچھا لگتا ہے. آپ کو اپنے ہسبینڈ سے کتنا ہی پیار کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی بات پہ بات بھڑک اٹھے تو کیسا لگتا ہے. بیوی کتنی لاڈلی پیاری کیوں نہ لیکن بھڑک ہی اٹھے کسی بات پہ تو مرد کو اچھی لگے گی. آپ کا لاڈلا، آپ کا پیارا، آپ کی آنکھوں کا تارا، آپ کے دل کی ٹھنڈک، آپ کے جگر کا ٹکڑا جب غصے میں اکڑتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے ایک لگاؤ اس کو. تو پھر آپ اپنے اندر یہ چیزیں لائیے، اوپر سے پہاڑ گزر جائیں، بڑے بڑے تھریش ہولڈ سے بندہ گزر جائے، اندر کیا جوار بھاٹے ہیں پتہ بھی نہ چلے. صبر کیجئے، وقت پہ بات کریں گے. ہم تو پھٹ نہیں پڑتے کسی کے لیے، دل میں کوئی بات کوئی کرے، اچھے بھلے بیٹھے میں کوئی ایک بندہ ایسی بات کر دے جو آپ کے اوپر چوٹ پڑے اور واقعی آپ نے نہیں کی، مان لیتے ہیں حالانکہ 5-10% کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جتنا اگلا کہتا ہے اتنی نہیں کی ہوتی، یہ آپ کی نیت فرق ہوتی ہے، اگلا اور اینگل میں لے رہے ہیں. کہہ لیجئے کہ آپ بہت ہی زیادہ درد کے ساتھ کہہ رہے تھے، اگلے کو نہیں پتا. لیکن دیکھیے لوگ کیسے بھڑکتے ہیں، میں نے دیکھا ہے منہ لال ہو جاتا ہے، پھویں تن جاتی ہیں، اور پھر کبھی روتے، کبھی آنسو، کبھی ناک پوچھتے، ہائے ہائے میرے اوپر اتنی باتیں کرتے، لوگ میری سنتے ہی نہیں. اچھی بھلی میٹنگز وہ اکھاڑے میدان بن جاتی ہیں، اچھے بھلے شادی ہال اور وہ کہہ لیجئے کہ وہ جگہ جہاں لوگ خوش ہونے جاتے ہیں، وہاں سے کرسیاں میز توڑتے ہوئے نکل آتے ہیں. جی انتہائی برا ہے بھائی، اگر کسی میں ہے تو اس کو دور کیجئے، غصہ آ سکتا ہے. آپ انسانوں کی اس دنیا میں رہتے ہیں، سارے فرشتے نہیں ہیں، سب آپ جتنے سمجھدار بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کو رہنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں کے بیچ میں رہے اور ان کی طرف سے ملنے والی ایزا پہ صبر کرے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کٹ چھٹ کے دور جنگل میں چلا گیا. کتنا آسان ہے اکیلا رہنا، نہ آپ کو کوئی دکھے، نہ آپ کسی کو دکھے، نہ کوئی دکھائے نہ دکھے، موج سے مزے سے سوئیں اٹھیں، کھائیں پئیں، اپنے زندگی گزارے، سیر کریں اور اپنے فونوں پہ باتیں کریں، کتنا مزہ ہے. لیکن نہیں، لوگوں میں رہنا ہے. کوئی کہے میں اسی گاڑی چلاؤں گا جسے گاڑی کوئی نہ ہو روڈ میں، تو وہ تو ہڑتال ہوگی یا کرفیو ہوگا، آپ کو خود ہی وحشت ہونے لگے گی کہ آج اتنی خاموشی کیوں ہے باہر. لوگوں میں رہ کر، خاندانوں میں رہ کر، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کر، اور سب سے بڑی بات ٹیم میں رہ کر حلم کے ساتھ چلیے. لیڈر میں حلم نہیں رہے گا تو ٹیم ٹوٹ جائے گی، یہ لکھ کے رکھ لیجئے. ٹیمیں ٹوٹتی ہیں ایسے وقتوں پہ جہاں کوئی ایک بات بس ہائی لائٹ ہوئی اور وہ چنگاری شعلہ بن جاتی ہے. پی جائیے، پی جائیے. جب حضرت عمر کی خلافت کا وقت آیا، کچھ لوگوں نے ابو بکر سے فرمایا کہ عمر میں بڑی سختی ہے، مراد یہ تھا کہ یہ کام نہیں چلتا سختیوں سے. کتنا ٹوٹنا پڑتا ہے بندے کو، تو پھر کہیں جوڑتے ہیں آپ، خود نہ پگھلیں تو دو کے بیچ میں آپ سلیوشن کیسے بنے. اپنے اوپر لینا پڑتا ہے، کتنوں کو تسلیاں دینی پڑتی ہے، کتنوں کی لاڈ دیکھنے پڑتے ہیں، کتنوں کو پیار محبت دکھانا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے صبر سے بیٹھتے ہیں لوگ. تو اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ابو بکر اور عمر کا مزاج فرق تھا. ابو بکر میں پیدائشی بردباری تھی، اور کہا کوئی بات نہیں، عمر کی خلافت کا بوجھ ان کو نرم کر دے گا. تو لکھیے جتنی ذمہ داریاں پڑیں اتنا حلم آنا چاہیے، نہیں آئے گا تو ٹوٹ جائیں گے. या आपको हटा दिया जाएगा या लोग आपको छोड़ के रह जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा, और आप कहेंगे लोग कम होते जा रहे हैं, पहले बड़ा जोश था इनमें, अब नहीं है। टोन नरम, हड्डी नहीं है जुबान में, चारों तरफ दुश्मन है, दांत जुबान के दुश्मन। कभी दांत के नीचे जुबान आ जाए, देखिए कितने दिन तक खून निकले और कितनी तकलीफ हो, अल्लाह ना करे किसी का हो। कहा किसी ने कि ऐ जुबान कैसे रहती हो इतने दुश्मनों में, कहने लगी अपनी नरमी की वजह से। इधर से दुश्मन आए, मैं उधर लुढ़क गई, मैं उधर लुढ़क गई, इसकी जगह सख्त हड्डी तो टूट ही जाए। आपके अपने मुंह में हड्डी आ जाए तो कई दफा दांत टूट नहीं जाता। तो फिर क्या देखिए अल हलीम के बारे में, अल्लाह ताला के इस नाम की तारीफें, और बहुत सारे इसके मानी हैं, कई तारीफें आप इंशाल्लाह आज सुनेंगे। फौरी पकड़ने की ताकत रखने के बावजूद, यानी फौरी पकड़ के लफ्ज को जहन में लाइएगा, फौरी पकड़ने की कुदरत रखने के बावजूद वो अपने नाफरमानों को सजा देने में जल्दी नहीं करता, बल्कि इनसे दरगुजर फरमाता और इन्हें माफ करता है, नीज इनके गुनाहों पर पर्दे डालता और इनकी खताएं माफ फरमाता है ताकि वो रुजू कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की कोई नस्बत तो नहीं है, लेकिन माएँ बड़े पर्दे डालती हैं, आपको पता है? जो माओं की तरह होता है ना, उसको कभी पूछा करेंगे वो किस किस चीज़ के ऊपर पर्दे डाल के चलता है। कभी एक बच्चे को बचाती हैं बाप को गुस्सा ना आ जाए, कभी बड़े भाई के गुस्से से बचाती हैं, कभी वो छोटे के गुस्से से बड़े को बचाती हैं। और अल्लाह ताला इतना क्यों मौका देता है, जल्दी क्यों नहीं करता, दरगुजर क्यों करता है, माफ़ क्यों करता रहता है, गुनाहों पे पर्दे क्यों डालता रहता है, खताएं क्यों माफ़ करता रहता है, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो रुजू कर लें। एकदम हथकड़ी लगाकर जेल में डालना क्या मुश्किल है, लेकिन अल्लाह मौका देता है कि जो नेक है वो और नेकियां कर ले, साबिर और सब्र करके अजर ले जाए, और जो बद है या बुरा है वो फिर और गुनाह कर ले। ना ना ना, उसके लिए अल्लाह चाहता है कि वो तौबा कर ले। नेक को सब्र का मौका देता है, दो के साथ मामला हो रहा है, एक सख्ती कर रहा है, एक ज्यादती कर रहा है, एक भुगत रहा है, अल्लाह कहता है ये जो ज्यादती कर रहा है ना, इसको मौका दे रहा हूँ कि ये तौबा कर ले। तो भाई उसका क्या बना, वो जो दूसरा बेचारा मजलूम का वो सब्र कर करके और अजर ले ले। जी चलिए देखिए जरा और तारीफें, आप हैरान हो जाएंगे इस नाम को सुन के कि कैसे अल्लाह की हस्ती अपनी जात में आला है। इब्ने जरीर कहते हैं अल हलीम कौन है, अन्नहु ज़ू अनातिन ला युअज्जिलु अला इबादिही बि अक़ूबतिहिम अला ज़ुनूबिहिम। अल हलीम वो जात है जो नरमी करने वाला है और अपने बंदों को गुनाहों पर अजाब देने में जल्दी नहीं करता। कितना प्यार है उसको अपने बंदों से। और इमाम खत्ताबी क्या कहते हैं, कहते हैं कि अल हलीम हुवा ज़ु सफ़ह वल अनाती अल्लज़ी ला यस्तफिज़्ज़ुहु ग़दबुन वला यस्तख़िफ़्फ़ुहु जहलुन जहलु जाहिलिन वला इस्यानु आसिन। अल हलीम वो ऐसा माफ़ करने वाला और नरमी करने वाला है जिसकी नरमी को ना गुस्सा ख़त्म करता है और ना जाहिलों की जाहिलाना बातें और ना गुनाहगारों के गुनाह इसको कम करते हैं। कुछ बात मिलती जुलती लगी। आप देखिए अक्सर लोग क्या कहते हैं, फिर उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, वैसे मैं गुस्से में नहीं आता पर जब मुझे कोई गुस्सा दिला दे तो फिर तो मैं बहुत आता हूँ। तो फिर आपकी क्या बहादुरी है भाई, कोई चूल्हे पर रखे तो आप गर्म हो गए, तो ये क्या बात है। असल बात यह है कि जब लोग गुस्सा दिलाएं, जब लोग जाहिलों की सी बातें करें, जब लोग आपके सामने गलत गलत मामलात करें, गलत बातें आपके बारे में लगाएं, तो उस वक्त कहिए ना ना मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्यों ऐसी बात बोल के अपने अदर को कम करूं। और जितना ज्यादा आप देखेंगे कि किरदार साजी बचपन में कर दी जाए ना, वही चीज वक्त के साथ साथ फिर फायदा देती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बचपन में माएं उनके लाड देखती रहती हैं। क्यों देखती रहती हैं, इसलिए कि माओ ने लाड देखे ही बड़े। बिगाड़ती माएं हैं, भुगतती बीवियां हैं, इल्ला माशाल्लाह, ये अब अल्लाह को पता कि किस हद तक बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बात है। आगे चलिए तीसरी तारीफ। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं रहमहुल्ला, हलीमो गफूर वो ज़ात है जो अपने बंदों को इस हाल में देखता है कि बंदे इसकी ज़ात का इनकार और इसकी नाफरमानियाँ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बुर्दबारी का मुजाहरा करता है, इनके मामले को मौखिर करता है, इनको मोहलत देता है और इन पर जल्दी नहीं फरमाता, और फिर दूसरों की नज़रों से उनके ऐबों को छुपाता है और इनको माफ़ कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी मेरे अंदर ये खूबियाँ आ जाएं तो मैं तो अपने आप से राजी हो जाऊं। हम लोगों को स्पेस नहीं देते लिखे। अल हलीम कौन जो स्पेस देता है। हम नेकों को तो ज़रा एक साइड पे कर दीजिए, दीन का काम करने वालों को तो ज़रा से एक साइड पे कर दें, हम तो गुनाहगारों को स्पेस ना दें, हम तो किसी को माफ़ ना करें। हम कहते हैं होते कौन गे कि तुम फुलां तुम फुलां, और बस तबलीग के दौरान लोग ऐसी कड़वी जुबान बोलते हैं कि मैं कहती हूँ अल्लाह करे ये कोई गुनाहगार ना सुने, ये कोई दीनदार ही सुन ले तो बेहतर है, और वो ऐसा नहीं करेगा कि कितना बद्दा अंदाज है। कोई गुनाहगार देखेगा उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, वो कानों का हाथ लगाएगा, मैंने नहीं किसी की दर्द सुनने, मैंने नहीं किसी की बात सुननी, ये बड़ी कड़वी बातें करते हैं। और ये देखें बुर्दबारी का मुजाहरा, मामले को मौखर करना, मोहलत देना, जल्दी ना करना, फिर दूसरों की नज़रों से ऐबों को छुपाना। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे ऐबों को छुपा देता अल्लाह ताला। आप देखिए कि कभी आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ हो तो एक अच्छी खासी आपके छली सी बन जाती है स्टिचेस की, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टिचेस सूखते हैं, फिर खुश्क होते हैं, फिर कटते हैं, वो एक आपको डोरी सी दिखती है, और एक वक्त आता है आहिस्ता आहिस्ता मुंदमिल हो जाते हैं। आपको उस डॉक्टर पे प्यार आता है जिसने आपके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा निकाल दिया जो आपको तकलीफ देता था, और एक दिन आएगा कि आपकी स्किन को पता भी नहीं होगा कि इधर कट लगा था और टांके लगे थे। अल हलीम इसी तरह से आपके ऐबों की गिल्टियाँ निकाल के फेंक देता है, और फिर सबसे बड़ी बात है माफ़ कर देता है। शुक्र कीजिए रब से मामला है, किसी बंदे से मामला होता तो हम सब शर्मिंदगी के मारे किसी को शक्ल ना दिखा सकते। मेरा रब बड़ा प्यार है, मैं किसी के साथ क्यों अपने मामले को टेढ़ा करूं, बड़ा ही प्यार करता है आपसे। यकीन करें आपका रब बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है आपसे। वो कभी सोचे तो सही उसके प्यार को, उसकी मोहब्बतों को, वो निछावर करता है अपना आप आपके ऊपर, तभी तो दुनिया चल रही है। क्या माँ का प्यार, क्या किसी दोस्त का प्यार, क्या सहेली का, क्या शोहर का, क्या बीवी का प्यार, जो सल हलीम का प्यार और जो उसका फो दर गुजर है। और इमाम इब्न कय्यिम रहमहुल्ला फरमाते हैं अल्लाह ताला अल हलीम जल्ला जलालहु बंदे को सजा देने में जल्दी नहीं फरमाते ताकि बंदे को मोहलत मिल जाए और वो गुनाह से तौबा कर ले। क्या बात है, आप देखिए कि अल्लाह ताला रास्ता देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ना माँ रास्ता देखती है, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, अल्लाह ताला बंदे की राह देखता है। वो हदीस याद कर लें जो सहरा में भटकता हुआ शख्स जिसकी ऊँटनी खो गई और जब ऊँटनी मिल गई तो कहता है या रब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। गलत बोल दिया, शिर्क से भरा हुआ जुमला बोल दिया, लेकिन अल्लाह ताला को पता है कि बंदे की नीयत क्या थी। अल्लाह कहते हैं मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब मेरा कोई गुनाहगार बंदा भटके हुए ऊँट की तरह इधर से उधर होकर वापस आता है। और ये इब्ने कय्यम का जो कॉल है ना, ये इन्होंने असल में अपने क़िस्से नूनिया में कहा है। कहते हैं वहुवल हलीम फला युआजिलु अब्दहु, वो हलीम है जल्दी नहीं करता अपने बंदे के मामले में। बिअक़ूबतिन लियतूबा मिन इसयानिन, उसको पकड़ने में ताकि वो तौबा कर ले अपने गुनाहों से। अल्लाह हमारे अंदर ये खूबी डाल दे, माँ बाप को अपने अंदर भी डालनी होगी। बिगाड़ना नहीं है बच्चों को, अच्छे बुरे का फ़र्क तो बताना है, लेकिन जब वो इस रास्ते पे चलते चलते ज़रा से फिसलने लगें तो फिर उनको मोहब्बत से वापस भी बुलाना है। इसी तरह चौथी तारीफ है शेख सादी की, फरमाते हैं अल हलीम वो ज़ात है जल्ला जलालुहु, वो अपनी मखलूक पर ज़ाहरी और बातनी नेमतों की ज़्यादती करता है बावजूद के मखलूकात के गुनाह और गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इनके गुनाहों के मुकाबले में नरमी का मामला करता है और इनसे नाराज़गी का इजहार करता है ताकि वो तौबा कर लें, और इनको मोहलत देता है ताकि वो रुजू कर लें। इधर क्या बात एक्स्ट्रा दूसरी तारीफ़ों से नोट किया आपने, ज़ाहरी और बातनी नेमतों की ज़्यादती करता है गुनाहों और गलतियों के कसरत से होने के बावजूद। है हम में से किसी का ऐसा वसब, हम कहते भाग जाओ मुझे खुश नहीं किया मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, माँ तक नहीं कहती, कहते चलो भाग दो तुमने स्कूल का काम नहीं किया ना मैं चॉकलेट नहीं दूंगी, और फिर ताकि वो रजू कर ले। वो गुनाहों पर फौरन नहीं पकड़ता इसलिए नहीं कि वो आजीज है बल्कि वो अपने हलीम होने की बिना पर मुआफ करता है और दरगुजर करता रहता है और कुदरत होने के बावजूद इनको मोहलत देता है। बस अल्लाह ताला को कोई चीज़ आजीज नहीं कर सकती जी, कोई आजिज नहीं कर सकती। देखिए इसका हिल्म इसलिए नहीं है कि वो अपने बंदों के अमाल से नावाकिफ है बल्कि वो तो हर ख्यानत करने वाली आंख और दिल के राजों को भी बखूबी जानता है, उसके लिए क्या मुश्किल है। हम जैसे तो हों अल्लाह को तो नहीं, वो तो खुद कहते हैं सूरत अल अज़ाब 51 में, वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, वो बड़े इल्म वाला और बड़े हिल्म वाला है। और इमाम सादी कहते हैं कि वो अपने इल्म कामिल से हर एक की बदगुमानियों और गुस्ताखाना ख्यालात पर भी मुत्तले है, जिसकी जब चाहे गिरफ्त करे लेकिन अपने कमाले हिल्म से फौरन गिरफ्त नहीं करता, सबको मौका और मोहलत दे रहा है। और इसी तरह इसका हिल्म इसलिए नहीं है कि इसकी को हाजत बंदों से अटकी हुई है, ये नहीं कि मजबूरी है बंदों से कुछ तो करना है, ये है वो है, इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो अपनी मखलूक से मुस्तगनी है। दरअसल वो दरगुजर करने वाला और मुआफ करने वाला है। अल्लाह अकबर, हम तो कुछ सब्र नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बताइए, हमारे पास और है क्या औकात? हमारी सबको मौके देता, मोहलतें देता, हाजतमंदों के साथ मामला अच्छा करता, उसको नहीं किसी की जरूरत, लोगों को उसकी जरूरत है। किसी को हमारी जरूरत हो और हमें लग बता जाए, देखिए जरा हमारे नखरे, हम कहते हैं चलो हमारे आगे पीछे फिरो, जूतियां चटको, फिर कहीं तुम्हारी बात सुनेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी अकड़ आ जाती है कितने छोटे से इंसान में, और कितनी हलीमी है उस जात में जो हकीकत में बहुत प्यार करता है। अपने बच्चों के नाम रखे अब्दुल हलीम और हलीमा, कितना प्यारा नाम है हलीमा सादिया, ऐसे लगता है सॉफ्टनेस, प्यार वाला नाम है ये। इसी तरह इमाम हलीमी, देखिए इनका नाम भी यही है, क्या कहते हैं इस नाम के बारे में? कहते हैं कि अल हलीम जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जो अपने बंदों के गुनाहों की वजह से इन पर इनामात और आसाइशों को रोकता नहीं है, बल्कि वो जिस तरह एक फरमा बरदार को रिस्क देता है, इसी तरह नाफरमानों को भी रिस्क देता है, और इन नेमतों का नजूल मुसलसल अपने गुनाहगार बंदों पर भी करता है कंटिन्यूस। एक आध दफा देना आसान होता है, बार बार नहीं बंदा दे सकता, जिस तरह एक फरमा बरदार और मुत्तकी पर करता है। इन सारी बातों के बाद दिल कह रहा है ना कि अल्लाह ना करे वैसे कोई मौका बने और हम भी ऐसे ही करें, है बड़ा मुश्किल, लेकिन अल्लाह करे कि हम ऐसे बन जाए, अल्लाह के साथ मामला अच्छा करें। आप देखिए कि जितना ज्यादा आप अल्लाह ताला के मामले को बेहतरीन तरीके से समझते जाएंगे ना, उतना आपकी जिंदगी में ये मामला संवरता ही जाएगा। और ये भी याद रखिए कि जो शख्स ये जानता है, ये कौल है इमाम हलीमी का, कहते हैं कि जो शख्स ये जानता है कि अल्लाह अपने नाफरमान बंदों के साथ हिल्म और करम का मामला फरमाता है, तो इस शख्स पर जरूरी और वाजिब है। अब आपको तो पता लग गया ना, मुझे भी, तो ये अब मेरे और आपके ऊपर लाजिम है। लिखिए अपनी चेकलिस्ट आसत बनाइए, इस नाम को जानकर मैंने क्या करना है। पहली बात है कि आप भी लोगों के साथ नरमी और बुर्दबारी का मामला करें, जो इसके हुक्मों के खिलाफ चलते हैं, यानी जो आपकी बात ना माने उनके साथ आप भी नरमी का मामला रखें, और यही चीज़ इंसान के दीन के लिए, इसकी सेहत के लिए ज़्यादा मुनासिब है कि वो नरम खू, बुर्दबार, संजीदा और बावकार रहे। तो नतीजतन ये शख्स इस वसफ से हिल्म की इतनी मिकदार हासिल कर लेगा कि जिससे गुस्से का जोर टूट जाता है और बुराई करने वाले से बदला लेने का जज्बा भी दूर हो जाता है, बल्कि दरगुजर करने की इस कदर आदत डालनी चाहिए कि माफ करना तबीयत बन जाए। इसको हाईलाइट करिए, जैसे एक बात की थी ना पीछे, अला दिल में सरापाए अदल, तो आप फिर सरापाए माफी बन जाए। और जैसा कि तू इस बात को पसंद करता है कि तेरा मालिक तेरे साथ नरमी वाला मामला करे, इसी तरह तू भी अपने मातहतों, बीवी बच्चों, शागिर्दों और मुलाजिमों के साथ नरमी वाला मामला कर, इसलिए कि तुझको भी बुर्दबारी का हुक्म दिया गया है और इस पर सवाब भी मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपनी उम्मीदों पे पूरा उतरने वाला बना दे, क्योंकि देखिए ना रोज इतना प्यारा सीख रहे हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर किरदार साजी क्या होगी। ये तो करेक्टर बिल्डिंग कोर्स है, ये तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कोर्स है। अल्लाह की तो कोई मिसाल नहीं है, लेकिन अल्लाह वाली खूबियां अपने अंदर लाने के लिए एक इंसान अगर इतनी मेहनत कर ले तो अल्लाह ताला उसको क्यों ना बंदों का प्यारा बना दे। ये अलग बात है कि हम फिर इस चीज को लेते नहीं है। फिर इसी तरह से इमाम गजाली की भी सुन लीजिए तारीफ, कहते हैं कि जो अजाब देने में जल्दी नहीं करता, ना फरमानों की ना फरमानी और हुक्म की मुखालफत के बावजूद इसे ना गुस्सा आता है और ना गजब कि वो अपने बंदों को जल्द पकड़ ले, इसका गुस्सा और गजब इसे फौरी इंतकाम पर आमादा नहीं करता। ये आपको क्यों अपने बच्चों पे गुस्सा आया रहता है, पहले तो ये बताइए ना मुझे। चले मुझे नहीं बताएं, खुद को तो बताएं, इन मासूमों को तो बता दें। ये आपको अपने शोहर पैरों का गुस्सा क्यों आता है? एक आंखों देखी चीज़ कि कोई सिस्टर थी तो उन्होंने देखा क्या कि ग्रोसरी स्टोर पे शौहर और बीवी हैं और ग्रोसरी ले रहे हैं, देसी स्टोर्स पे जिस तरह से आपको पता है होते हैं। तो उन्होंने कहा कि शौहर ने बिल पे किया वो 1200+ करोन थे। तो मेरे दिल में इस बात को सुन के आया कि बेगम ने घर जाकर फिर भी कहना वो दुनिया नहीं आया, चाहे वो 10 करोन का होता। 1200 करोन की ग्रोसरी अगर एक मर्द बीवी के लिए कर दे तो बीवी क्या कहती है? शुक्रिया, जजाकल्ला, बहुत मेहरबानी, दो नफिर पढ़ो शुक्राने का, सजदा करो। उसने घर आके वो एक चीज़ ढूंढनी है जो लिखी थी या बताई थी और आई नहीं है। आप सोच लीजिए, फिर क्यों हम अपने शोहरों की आंखों के तारे बने? फिर वो हमसे क्यों प्यार करें? वो तो निभा रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं, हमसे क्या करें फिर? अम्मी अब्बा की इज्जत का मसला, बड़ी ना शुक्री करते हम लोग। और 1200 करोन में मेरा अलग पाकिस्तान में 1 महीने की ग्रोसरी आ जाए आम तौर पे। लेकिन बात समझिए, हम किसी की थोड़ी सी भी कमी बेशी को क्यों नहीं बर्दाश्त करते? असल में इस नाम में आपको ये सीखने को मिल रहा है।